क्यों देती हो राम नाम तुम, राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया।
गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम के अपने को है सीमा, रावण समय है मांगे क्षमा।
बज शक्ति का डंका जल पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई,
पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचाने अबाओ रघुराई,
राम में शक्ति अगर है राम में साहस है, तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को, जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ।
राम ही तो करुणा में है शांति में राम है, राम ही है एकता में प्रगति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है।
विपदा आई है, सीता कहां थी और कहां पहुंच गई, ऐसा क्या हो गया जो विपदा आ गई, किस वाटिका में थी और किस वाटिका में पहुंच गई। हर आत्मा सीता है और वो परमात्मा राम है। ऐसी कुछ घटनाएं हुई जो वो सीता दुखधाम में पहुंच गई, ऐसे वो कौन से कारण थे जिस कारण सीता शोक वाटिका में चली गई? सबसे पहला आकर्षण, सबसे पहला क्या हुआ? आकर्षण हुआ किसका? स्वर्णिम मृग का। दूसरा इच्छा हुई किसकी? उसे पाने की। तीसरा जिद की कि चाहिए। चौथा अविश्वास, जो आवाज आया उधर से, लक्ष्मण कह रहा है कि वो राम का आवाज नहीं है परंतु माया के आवाज को राम का आवाज समझा, अविश्वास। अगला रावण को पहचानने की भूल, रावण को नहीं पहचान पाई। जो कि ब्राह्मण वेश में आया है वही रावण था, नहीं पहचान पाई। अगला लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, और ये इतनी चीजें करने के बाद दुखधाम में पहुंच गई। वो कौन से आकर्षण है जो चेतना को आकर्षित करते हैं? भगवान का बनने के बाद भी वो कौन से स्वर्णिम मृग है जो उसे खींचते हैं अपनी तरफ? जिनका संपूर्ण ज्ञान है परंतु उसके आकर्षण से फिर भी मुक्त नहीं है, वो आकर्षण, वो इच्छा, वो जिद, वो अविश्वास, वो रावण को ना परख पाना और फिर उस रेखा का उल्लंघन। जब इन सभी बातों को आत्मा पार करती है तो अंतर जगत का जो सुखधाम था वो दुखधाम में रूपांतरित हो जाता है। इसके लिए मर्यादा की ये लकीर समझना इसे, और सबसे बड़ी मर्यादा इस ब्राह्मण जीवन की है, या इस ब्रह्मा कुमारी जीवन की, या इस ब्रह्मा कुमार जीवन की है, संपूर्ण प्योरिटी। ये एक ऐसा खजाना है, ऐसी पूंजी है, यदि ये छीन ली जाए तो आत्मा कंगाल बन जाती है। श्वेत वस्त्र है और बैच है परंतु फिर भी दुखी रहेगी। पश्चिम जगत में एक बहुत प्रसिद्ध घटना का वर्णन है, सेंट पॉल एंड सेंट थेक्ला। थेक्ला नाम की एक कन्या होती है, 20-25 वर्ष के अंदर उसकी उम्र, जिसका किसी युवक से प्रेम है और वहां उसकी अब शादी होने वाली होती है। उसका भी प्रेम है, उस युवक का भी प्रेम है। वो थेक्ला एक दिन अपने घर के वरांडे में खड़ी रहती है और वहां से एक संत गुजरता है, ईसाई संत सेंट पॉल, जो कि परमात्मा की महिमा करते हुए, गुणगान करते हुए, भजन गाते हुए जा रहा है। और उस भजन के शब्द कुछ ऐसे थे कि ही दैट इज चेस्ट शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। वो जो पवित्र है, वो जो ब्रह्मचारिणी है, वो जो ब्रह्मचारी है, शरीर से मन से वही परमात्मा के राज्य को देख सकेंगे। वो पहले दिन सुनती है, कुछ हलचल होती है, दूसरे दिन फिर सुनती है और उसको देखती रहती है। कैसी मगन अवस्था में वो ईश्वरीय गुणगान करते हुए जा रहा है। तीसरे दिन सुनती है उसी भजन को, उसी व्यक्ति को, और क्रांति हो जाती है और वो संकल्प कर लेती कि अब मेरा यह जीवन केवल प्रभु के लिए है, इस संसार के लिए नहीं, संसार की भोग वासनाओं के लिए नहीं, केवल उसके लिए। ही दैट इज चेस्ट इन बॉडी एंड माइंड शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। वो जो पवित्र है शरीर से और मन से, मैं अपने देह को और अपने मन को अपवित्र नहीं होने दूंगी। वो ना कुछ कहता है उससे, वो संत तो फकीर है, गुजर रहा है, न वो उससे कुछ कहती है, परंतु देखते ही और वो गीत सुनते ही ऐसा प्रभाव उस शब्दों का कि मन ही मन संकल्प कर लेती है कि मेरा जीवन ईश्वर समर्पित है आज से। उसका पति होने वाला जो था, जब उसको ये पता चलता है कि ये अब शादी नहीं करने वाली है, वो बड़ा विरोध करता है, उसकी मां से मिलता है, उसकी मां और उसका होने वाला पति दोनों ही मिलकर उसको बहुत सताते हैं, बहुत समझाते हैं, पर वो अब मानने को तैयार नहीं। बहुत समझा बुझाकर सब कुछ करने के बाद भी जब वो नहीं सुनती, उसकी झूठी शिकायत की जाती है और उसे कहा जाता है इसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, ताकि इस नगर की जितनी स्त्रियां हैं वो समझ ले। और उसे एकदम भयानक दंड दिया जाता है, सभी के सामने उसे बांध दिया जाता है और जिंदा जला देने की सजा उसे सुनाई जाती है। और वो चिल्लाती रहती है मौन में, ईसा मसीह का नाम पुकारती हुई, ओ जीजस, ओ जीजस। और उसको आग लगा दी जाती है, बर्निंग एट द स्टेक कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। और सारी स्त्रियां और सारे गांव वाले और सारे नगरवासी देख रहे हैं। और उसी समय एक चमत्कार होता है, अचानक बारिश आ जाती है और वो आग जल बुझ जाती है और वो वहां से छूट जाती है और वहां से अकेली ही कहीं और चली जाती है। और वो सेंट पॉल उसे मिलता है, वो दोनों ही एक दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसके होने वाले पति को और उसकी मां को पता चलता है कि ये भाग गई, वो होने वाला पति वहां पहुंच जाता है जहां वो है। और वहां और दो तीन घटनाएं दिखाई है और फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर उसकी झूठी शिकायत होती है कि ये एक गलत उदाहरण सबके सामने रख रही है, सभी स्त्रियों के सामने, ये कहां से ला लिया इसने, ऐसा कभी हुआ है? क्रिश्चियन धर्म में तो हमेशा पुरुष ही गए हैं, ये स्त्री कहां से ब्रह्मचारी व्रत धारण कर रही है? फिर से झूठी मूठी बहुत सारी बातें सुनाकर फिर से उसे पकड़ा जाता है, फिर से इस बार सबसे कड़ी सजा उसे सुनाई जाती है। अखाड़ा और सारे गांव वाले और उसे धकेल दिया जाता है उस अखाड़े में जहां पर तीन भूखे शेर है। उसे फिर से कहते हैं कि तुम मान जाओ, अब भी यदि तुम मान गई तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो कहती है अब मेरा ये जीवन केवल ईश्वर अर्पित है, चाहे कुछ भी हो जाए मर जाऊंगी पर विकारों के अधीन नहीं होंगी। और वहां बैठकर फिर से मन ही मन पुकारती है, आर्तनाद, आर्त पुकार। और एक दूसरा चमत्कार, वो जो दो शेर आते हैं उसकी तरफ भूखे, उसमें से जो तीसरा होता है वो शेरनी होती है, वो बीच में खड़ी हो जाती है और दोनों शेरों को आने नहीं देती और वो फिर से छूट जाती है वहां से निकल जाती है। और फिर दूर किसी स्थान तुर्की, वहां दिखाया है एक गुफा में वो रहती है लंबा समय तक, लगभग 90 वर्ष की होने तक वो वहीं रहती है। फिर एकांत में अपनी साधना करते हुए, एकांत में प्रभु चिंतन करते हुए, और ये सब करते करते उस ब्रह्मचर्य की शक्ति से, उस प्यूरिटी की शक्ति से उसके अंदर हीलिंग एनर्जी आ जाती है जो भी उसके पास आता है और जिसको वो हाथ लगाती है, सब सब ठीक होने लगते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी पावर आ जाती है कि वो हर बीमारी को ठीक करने लगती है। पर अभी तीसरी परीक्षा अभी और भी है। वहां के जो लोकल डॉक्टर्स वैद्य, उनको जलन होने लगती है। हमारे सारे कस्टमर उसके पास ही जाते हैं, कुछ करना चाहिए, और उनको पता चलता है इसकी इस उपचारक शक्ति का रहस्य है इसकी प्यूरिटी। अगर इसे भंग कर दिया जाए तो कुछ हो सकता है। वो तीन युवकों को तैयार करते हैं और वो उस समय 90 वर्ष की है बूढ़ी स्त्री, उसका शील भंग करने के लिए उस गुफा में भेजते हैं और दिखाया है कहां तक सत्य है पता नहीं, पर वो गुफा आज भी है टर्की में। और जो भारत में मीरा के लिए कहा गया, चैतन्य के लिए कहा गया और संत तुकाराम के लिए कहा गया है, कितना सत्य है ऐसा हो नहीं सकता। पर इन तीन आत्माओं के लिए कहा गया है, इन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, सशरीर भगवान में विलीन हो गए। मीरा की मृत्यु की कोई खबर नहीं है, वो उस मूर्ति में समा गई। चैतन्य महाप्रभु विलीन हो गए, संत तुकाराम विलीन हो गए। जैसे भारत में इन तीन लोगों के लिए कहावत है, वैसे ही वो तीन युवक सामने से आते हैं, वो पीछे पीछे हटती जाती है और उस गुफा में समा जाती है। इस कहानी का वर्णन है क्रिश्चियनिटी में, चौथी शताब्दी की ये कहानी है, द स्टोरी ऑफ सेंट थेक्ला एंड सेंट पॉल, और ये दर्शाती है उसकी प्यूरिटी की शक्ति को, बल को। सब कुछ सहन करने को तैयार है परंतु संसार के आकर्षण और संसार के प्रलोभनों के सामने झुकती नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, झाड़ू पोछा करना पड़े तो भी करो, प्यूरिटी को मत छोड़ना। बच्चे बाप से पूछते हैं साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, बाबा, मां बाप कहते हैं शादी करो, हम क्या करें? बाप कहते हैं, बाप कहते हैं यदि सर कट जाए तो भी प्यूरिटी के व्रत को ना छोड़ना। आएगा कभी मुरली में, नोट करके रखना, साकार महावाक्य है। तो यह सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी धारणा है, और इसके बड़े सूक्ष्म आयाम है। सुबह की साकार मुरली किसी से भी लागत ना हो, मित्र संबंधी शरणागति उनको मिलेगी जो संपूर्ण नष्ट मोहा है, सब मरे पड़े हैं जिनके लिए ऐसी जिनकी स्थिति है, वही बाप को बहुत प्रिय है। जिनका इस संसार में किसी से मोह नहीं, केवल एक में ही मगन है, एक से ही सारे संबंध, एक ही रस, एक ही याद, एक से प्यार, एक ही जिनका सब कुछ है। इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण हैं। सासू कहे घर फोड़ी, लोग कहे बावरी, सब सहन किया। उस राजस्थान में जहां सदियों से किसी स्त्री ने घूंघट नहीं उठाया, सड़कों पर घूम रही है, फिर रही है, क्यों? किसने शक्ति भर दी इसने इतनी उसमें, ईश्वरीय प्रेम ने, और वो मीरा है हम है, और वो राधा है हम है, और वो गोपिया है हम है, और वो सभी आत्माएं जन जन से जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ करने की सौगंध खाई थी वो हम ही है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है कागज का पहाड़। कभी सुना है ये शब्द? नहीं सुना है, नहीं सुना है तो अव्यक्त वाणियों का फिर से अध्ययन करने की आवश्यकता है। अव्यक्त मुरलियों में आया हुआ शब्द है, टीचर्स से मुलाकात। जो समस्याएं, जो विघ्न, जो परिस्थिति आ रही है, केवल कागज का शेर है या कागज का पहाड़ है, बाबा के महावाक्य है। तो इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में बहुत सी समस्या आएगी, बहुत से विघ्न आएंगे, बहुत सी परिस्थिति आएगी, यहां पर सिक सिक झुक झुक मरमर, ओखली में सिर दिया है तो क्या, तो मूसलों से क्या डर। और ओखली कौन सी है? ये ब्राह्मण जीवन ही ओखली है, ये सेवा केंद्र ही ओखली है, ये पब्लिक लाइफ ही ओखली है, ये मधुबन ही ओखली है, ये पूरा संगम युग ही ओखली है, और जिसमें सिर दिया है तो मूसलों से क्या डर। तो जो भी पहाड़, जैसी परिस्थिति आ रही है, वास्तव में वो पहाड़ है नहीं। सोच सोच के हम उनको बड़ा बना रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं है, कागज के शेर है, पेपर टाइगर। तो इस जीवन में, एक ब्रह्मा कुमारी जीवन में, हर एक ब्रह्मा कुमारी को, छोटी बड़ी सभी को, ऐसे 10 पहाड़ों का सामना करना पड़ेगा, और एक एक पहाड़ एक एक खतरनाक है। परंतु यदि भगवान साथ है तो वो कागज के पहाड़ है, यदि भगवान साथ है तो वो खिलौने मात्र है, यदि भगवान साथ है तो वो कुछ भी नहीं है हमारी शक्ति के सामने। अभी अभी अनुभव किया हम है कौन, हम वो है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, हम शक्ति स्वरूपा है, शिव की अर्धांगिनी है। मम्मा के लिए बाबा ने कभी कहा था, मम्मा वो आत्मा है जिसके प्रति संसार के विकारी से विकारी आत्मा के मन में भी कभी विकार की भावना उत्पन्न नहीं होगी, ऐसी प्यूरिटी मम्मा में है, वो हमारा आदर्श है। तो ऐसी 10 बातें आएगी, नोट करके रखनी है, और वो एक एक बात हर एक को हिला देगी, परंतु हिलना नहीं, परंतु अडोल रहना, वही परीक्षा की घड़ी है। उसमें पास तो पास, 10 पेपर कहो, 10 बाधाएं कहो, 10 समस्याएं कहो, 10 विघ्न कहो, या 10 पहाड़ कहो, कभी ना कभी तो आएंगे। सबसे पहला पहाड़ लौकिक, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, स्वजनों की आर्थिक कमियां, एक बहन कहती है मेरा भाई बहुत शराब पीता है, मैं क्या करूं, उसके वजह से ये परेशान है, रह रही है सेंटर पर परेशान इसलिए कि भाई शराब पीता है, क्या किया जाए। क्या किया जाए? सन्यास के तीन नियम हैं, इनको कभी नहीं भूलना है। सबसे पहला कट द ब्रिज, दूसरा थ्रो द लैडर, तीसरा ड्राउन द बोट। आर्मी में नियम है, यदि खाई है बीच में तो यहां से उधर जाना है, पुल बना जाता है, और एक बार उधर चले गए तो पुल काट देते हैं ताकि भागकर हम उस ओर ना जाए। एक बार उधर आ गए, उधर से क्या संबंध, एक बार उधर आ गए अब पुल को काट दो, कट द ब्रिज। अब उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए, कट, अब उधर से क्या संबंध, तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का ही पोषण हो रहा है, और जिसे हम कहते हैं हम तोड़ निभा रहे। एक सेवा केंद्र पर हम गए थे, बड़ी बहन जी कह रही थी ये बहनों को बताओ, अगर उनसे कुछ कहा तो धमकी देती है सीता, मैं जा रही हूं घर, रह रहे इधर, परंतु मम्मी के हाथ की रोटी और दाल अब भी याद आती है। कट द ब्रिजेस, एक बार उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए, अब क्या लेना देना। साकार महावाक्य है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारी नाव चल पड़ी है, तुम्हारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। ये पहला नियम। दूसरा नियम ड्राउन द बोट, उस किनारे से इस किनारे जिस नाव में बैठ के आए हो, इधर पहुंचने के पास उस नाव को ही डुबो दो, ताकि वापस उस दुनिया में जाने का कोई संकल्प ना हो। वो विकारी दुनिया, वो पतित दुनिया, उस दुनिया से अभी क्या लेना देना। वो होंगे कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, कोई मित्र, मां बाप, जो भी हो। बाइबल में एक जगह लिखा है, ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही दैट लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है कि जो अपने मां बाप को मुझसे अधिक प्रेम करता है, अपने लौकिक मां बाप को, वो मेरे लायक ही नहीं है, जाओ यहां से। जो अपने लौकिक भाई बहन को मेरे से अधिक प्रेम करता है, वो मेरे लायक नहीं है। ड्राउन द बोट, डुबो दो उस नाव को जिसमें बैठकर उस किनारे से इस किनारे आए। और तीसरा नियम थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी से चढ़कर नीचे से ऊपर उठे, अब ऊपर आने के बाद उस सीढ़ी को फेंक दो, नहीं तो वापस नीचे जाओगे। ऐसी नष्टो मोहास्थिति, ऐसे बच्चों को बाबा शरणागति देते हैं जो संपूर्ण नष्ट मोह है। इस दुनिया में है ही क्या, क्या रखा है इस दुनिया में जो इसकी तरफ देखते हो, यहां के लोग, यहां के मित्र, यहां के संबंधी, कल की मुरली, वो लौकिक मां बाप कौन सा वर्षा देते, विकार का वर्षा देते, माए बाप का वर्षा है वो। एक दूसरी माया है ज्ञानी मां बाप की, वो थोड़ी ज्यादा गहरी है। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में दिखाया है, एक युवक होता है, उसके मां बाप इतना उससे प्यार करते, ओवर केयरिंग, वो तंग आ जाता है और धमकी देता है, अगर मुझसे इस तरह सा व्यवहार करो तो मैं चले जाऊंगा यहां से, संसार को छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। और उसी समय महात्मा बुद्ध का विहार का संग आसपास कहीं आता है, और एक दिन वो बच्चा मिसिंग, दिखता ही नहीं कहां चला गया, और वो जाकर संन्यास ले लेता है, मां बाप से परेशान होकर। हर बात में उसे पूछते रहते हैं, हर बात में उसके साथ चलते रहते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग पेरेंट्स। वहां चला जाता है, पिता परेशान होते हैं, मां परेशान होती है, कहां गया ये। पिता ढूंढने निकलते हैं उसको, बहुत ढूंढते, फिर ख्याल में आता है ऐसा कुछ वो कह रहा था, तो उस आश्रम में पहुंचते हैं और अपने बेटे को देखते, पिता कहते मुझे भी संन्यास लेना है, और पिता भी भर्ती हो जाते हैं। मां घर में परेशान अकेली, वो कहती है पता नहीं कहां चले गए, वो ढूंढने निकलती है और उसको पता चलता है ये लोग यहां है, वो कहती है मुझे भी भिक्षुनी बनना है, और वो भी संन्यास लेती है। अब तीनों ही साथ साथ उठते हैं, साथ साथ भिक्षा मांगने जाते हैं, साथ साथ प्रवचन सुनते हैं, साथ साथ सोते हैं। अब ये नया संन्यास चालू कर दिया,
संन्यास की परिभाषा है नष्टो मोह, ये तीनों ही आ गए और साथ साथ सब कुछ करते हैं, इसे क्या कहेंगे? पहले उधर वाला था, अब इधर है सारा ही परिवार, और आपस में बहुत मोह। योग भी साथ साथ पवित्र प्रेम, वो है तो योग अच्छा लगता है, वो नहीं है तो योग नहीं लगता है। मधुबन में हमने दो बहनों को एक बार देखा था, सामने बैठी थी, वो उसको खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी चम्मच से, ऐसा प्रेम। प्रेम है या क्या है? Cut the bridges, drown the boat and throw the ladder. तो सबसे पहला पेपर जो आएगा वो लौकिक से आएगा, किसी की अस्वास्थ्य, किसी की मृत्यु, तोड़ निभाना परंतु फंसना नहीं, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में ज्ञानी में ही ज्यादा माया है, अज्ञानी की तरफ तुम नष्टुमा हो जाते, पर ज्ञानियों में ही फंसे हुए हैं, यह भी देखा गया है। एक बहन इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी सेंटर की, उसने कहा कि मैं क्या करूं, किसको बता भी नहीं सकती। सेंटर की जितनों भी भंडारी आती थी, घर में प्रॉब्लम थी आर्थिक, वहां भेजती गई और किसी को नहीं बताया। अब मैं क्या करूं, बोझ लग रहा है, पाप हो गया जैसे, पर अब बताऊं तो चहुओर मेरी बदनामी हो जाएगी। मोह कुछ भी करने को विवश कर देता है आत्मा को, कुछ भी। फिर वो ये नहीं देखती ये यज्ञ का है या बाहर कहां का है। इसलिए सबसे पहली माया, विघ्न, पहाड़ जो खड़ा होगा वो लौकिक से ही होगा, परंतु बाबा के महावाक्य ये कागज का है, अभी से नष्ट होने की प्रैक्टिस चाहिए। और जो विश्व के लिए आए वो एक का नहीं हो सकता, जो विश्व के लिए आए वो एक परिवार का नहीं हो सकता है, जो विश्व के लिए आए वो एक समाज का नहीं हो सकता है, जो विश्व के लिए आया वो एक राज्य का नहीं हो सकता, एक राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो सकल जगत का है। इसके लिए किसी एक में फंसना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। किसी एक परिवार में भी फंसना मूर्खता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक वृत्तांत है, वो जो सन्यासी संग था उसमें एक जो उनका गुरु भाई था, वो बार बार अपनी मां से मिलने जाता था, लौकिक मां से मिलने। उन्होंने कहा, I don't want ambiguous type of personalities who are half monks and half householders, out, यहां से बाहर जाओ। ये योगियों का संघ है, चाहे मां हो, बहन हो, जो भी हो, भाई हो, ऐसी चेतना की आंतरिक मोह रहित अवस्था चाहिए जिसमें कोई याद ना आए। अभी से अभ्यास करना तो वो पहाड़ पेपर का हो जाएगा, डराएगा नहीं, उनकी यादें, ये सबसे पहला। दूसरा पहाड़ शरीर, शरीर और शरीर की बीमारियां। कोई ये सोचे कि मुझे कोई बीमारी नहीं आएगी, ये भी नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में एक बहन बार बार आते रहते, एडमिट होते हैं, यंग है, सेंटर पर समर्पित बहन, 25 वर्ष लगभग, कहीं स्कूटी से गीता पाठशाला में जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी, उसके बाद में दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज, पैराप्लेजिया, पैरालिसिस नहीं, प्लेजिया अर्थात पूरा ही पैरालिसिस, उंगली भी नहीं हिलती है, तब से कितने साल हो गए ऐसे ही है। उसकी लौकिक बहन उसकी सेवा करती है, उसको बेड से उठाकर चेयर पर बिठाने के लिए दो तीन लोग लगते हैं पकड़कर। क्या दोष है उसका? जन जन के हिसाब है, और यह बीमारी भी आएगी, परंतु मन बीमार ना हो। उस बहन को हमने देखा, हमेशा हम सोचते थे शायद ये अंदर से डिप्रेस्ड होगी, सोचती रहती होगी अभी मेरा आगे क्या, इतना बड़ा जीवन है क्या करूं। पर एक बात देखा, उसको कभी दुखी नहीं देखा। ये सब होते हुए भी हमेशा चेहरे पर हंसी खुशी, मुरली पड़ेगी, पड़ेगी मतलब खुद तो नहीं पढ़ सकती, कोई पढ़ाए, पढ़ाएगा रोज तो सुनेगी, पर उदासी जरा भी नहीं, 1% भी नहीं। ऐसी भी आत्माएं हैं, इतना कड़ा पेपर होते हुए भी अचल अडोल। एक दूसरी बहन हॉस्पिटल में आती है, उसे फ्रेडरिच अटैक्सिया है। वो एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें धीरे धीरे चलना बंद हो जाता है, पहले चलती थी, अभी दीवार को पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। उसके भाई को भी, वो परिवारों में चलती है, भाई अभी तक ठीक था, अभी भाई को भी धीरे धीरे चालू हो गई, सबको होने लगती है। कड़े से कड़ा पेपर है ये देह, और ये भी आएगा। इसमें तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला संयम। हम अव्यक्त महावाक्य बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, जो बच्चे अपनी गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी तू योगी आत्मा नहीं कहते। जो बच्चे अपनी ही बीमार, अपनी ही गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते, बाबा उन्हें योगी तू आत्मा नहीं कहते, ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहते। कहीं और एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा का, शरीर को चलाने नहीं सीखा तो राज्य को क्या चलाओगे। सबसे पहला तो इस देह को चलाने की कला सीखनी है, अर्थात इस देह को स्वस्थ रखने की कला सीखनी है, अर्थात जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जिस तरह की जीवन शैली है वो संयमित हो, योगियों सी हो, भोगियों सी ना हो। एक बात। दूसरी बात, रेगुलर मेडिकल चेकअप, साल में कम से कम एक बार। कितनी बहनें हमारे पास आती है, एक दिन में लगभग हम 20 से 25 बहनों को देखते हैं ओपीडी में। कई बहनें सोचती है ये जो मुझे उदासी है, ये जो मुझे दुख लगता है, शायद टेंशन की, सेवा की टेंशन की वजह से या सेंटर के तनाव की वजह से इसलिए मैं दुखी हूं। वो कारण था ही नहीं, कारण थायराइड था जो कभी टेस्ट ही नहीं किया। 200 थायराइड फर्स्ट रीडिंग, हर हफ्ते में दो बहनों तो ऐसी होती होंगी जिसको फर्स्ट टाइम डिटेक्ट होता है, और वो कभी किया ही नहीं, उसने चेक ही नहीं किया वो, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ जो है वो मानसिक है, उदासी है, पर वो उदासी का कारण थायराइड था। वो उदासी का कारण या जो शारीरिक तकलीफ थी उसका कारण, मानसिक तकलीफ थी उसका कारण, कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई असंतुलन था, किसी विटामिन की कमी थी या कुछ और था। यह दूसरी बात याद रखनी है। और तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण, यह सब करने के बाद में भी यदि बीमारी आ जाए तब फिर उसे स्वीकार करना है प्रेम से, बेचैन नहीं हो जाना है, ये मुझे क्यों आई, ऐसी क्यों आई। अभी वर्तमान में दो बहनें हैं जिनको कीमोथेरेपी चालू है, ज्ञान सरोवर में रहती है, सेंटर की है अभी तो ज्ञान सरोवर में, ऑपरेशन हो गया ब्रेस्ट कैंसर का, अभी कीमोथेरेपी के लिए, पर कोई सेवाधारी साथ में नहीं है, अकेली आती है, अकेली ब्लड टेस्ट देती है, अकेली कीमो चलता है 6 घंटा 5 घंटा, वो खत्म होने के बाद में फिर ओपीडी में आती है, फिर दूसरे दिन ब्लड चेकिंग के लिए आती है, फिर जाती है, सब कुछ अकेले ही करती है, कोई नहीं है, कौन रहेगा इतना दिन, कौन सेवा के लिए रहेगा इतना दिन, सब कुछ अकेले। कितनी हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। और वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स, वो उल्टियां, वो वॉमिटिंग, कभी चक्कर तो कभी कुछ, बीमारी आने के बाद में भी अचल अडोल रहना, ये तपस्या है। हमने कितनी सारी दादियों को देखा, शांतमणि दादी, पालू दादी, मनोरिंद्रा दादी, इधर प्रिक इधर प्रिक, इधर लाइन इधर लाइन, कुंज दादी, कोई जैसे शरीर से डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं, जो करना है करो। कितनी साधना होगी उन दादियों की देह से डिटैचमेंट की, ये एक बड़ा कड़ा पेपर है जो आएगा और हर एक को आएगा, कोई नहीं छूट सकता इसमें से। कोई रेयर ऐसी आत्मा होगी जिसको कोई बीमारी नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, खिटखिट होगी शरीर की, और जब वो होगी तभी तो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। नहीं तो हमने एक ऐसी भी बहन को देखा, कैंसर है, शरीर में फैला हुआ है, पर इतना चिड़चिड़ा स्वभाव, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, जिसने कई सारे सेवा केंद्र खोल दिए और कितने लाखों का कोर्स कराया होगा, परंतु आज जब बीमारी है तो बाबा का नाम तक नहीं, बाबा मुख से निकला भी नहीं, और जब शरीर छोड़ा तो उसकी इच्छा मसाला डोसा खाने की, मसाला डोसा खाते खाते शरीर जब प्राण तन से निकले, बाबा का कहीं नाम निशान नहीं, कुछ नहीं, ना तो आत्माभिमानी स्थिति, सबसे चिड़चिड़ा चिड़चिड़ापन, सबको डांटना, ये अवस्था में शरीर छूटा। हो सकता है ये वेटिंग पीरियड था, जो पुरुषार्थ था वो पूरा हो गया, ऐसी कई आत्माएं वेटिंग पीरियड में है अभी भी, जो पुरुषार्थ करना था कर चुके, अभी कुछ और ही कर रही है, अभी जो कर रही है वो पुरुषार्थ है ही नहीं, अभी जो कर रही है वो तपस्या है ही नहीं, अभी जो कर रही है वो होड़ है, नाम की, मान की, शान की, या कुछ और। तपस्या ऊपर से लेबल लगा है केवल सेवा का, उस सेवा के लेबल के अंदर मैं का विस्तार चालू है, मैं। तो ये दूसरा पेपर, उसमें ये तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहला क्या करता है, अपने देह को स्वस्थ रखना, उसके लिए एक्सरसाइज, उसके लिए वॉकिंग, ये सारी चीजें जरूरी है, आहार। दूसरा बताया चेकअप, मेडिकल चेकअप, जिन्होंने कभी भी नहीं किया है वो करना बहुत आवश्यक है। और तीसरा बताया बीमारी आने के बाद कैसे अचल रहना, सीखना है दूसरों से, ये दूसरी बात कहो या पहाड़ कहो, पर है ये भी कागज का ही, छोटा सा है पर बड़ा दिखता है। तीसरा है साथियों से पेपर, सेवा केंद्र पर रहने वाली दूसरी साथी बहनों से, कौन सा पेपर आता है साथी बहनों से, कौन सा, टकराव, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा। दादी जानकी के पास कभी दो बहनें आई थी विदेश की, तो किसी ने कहा दादी इनका झगड़ा हो गया है, दादी ने कहा ठीक है झगड़ा ठीक है, मोट नहीं चाहिए, क्या लोगे, अगर आपको एक तरफ झगड़ा एक तरफ मोह, दोनों में से एक चुनना है, क्या चुनोगे क्या चुनोगे, मोह, मोह में बड़ी बेचैनी है, बड़ी आसक्ति है, उसका फोन किया और उसने उठाया नहीं तो कितनी बेचैनी, इधर से मैसेज भेजा उधर से कोई रिप्लाई नहीं, बेचैनी, मोह हलचल की अवस्था है। झगड़ा फिर भी ठीक है, झगड़ा हो गया, वैसे दोनों नहीं चाहिए पर दोनों में से यदि एक सिलेक्ट करना है तो झगड़ा ठीक है। दादी ने कहा ठीक है, ये ठीक है, मोह नहीं चाहिए। मोह बड़ा बेचैनी उत्पन्न करता है, मोह। तो साथियों के द्वारा पेपर कौन कौन सा आएगा? झगड़ा, मनमुटाव और ईर्ष्या। ईर्ष्या, और जिससे ईर्ष्या होती है वो व्यक्ति कभी सामने से कहता नहीं कि मुझे तुमसे ईर्ष्या है, पर अंदर ही अंदर जलते रहता है। यदि हमारी जाकर तारीफ कोई उसके सामने कर दे तो और बेचैनी बढ़ जाती है। ये भी होगा आपस में। इसके लिए कई बार मुरलियों में आता है क्या, लून पानी नहीं होना है। क्या आता है मुरलियों में? तुम्हें शीरखंड होकर रहना है, सब प्रभु परिवार है, एक परिवार के है। और एक चीज, एक है व्यक्तित्व, एक है कर्म। कर्म को व्यक्तित्व से अलग करना है। इसने ऐसा किया, इसका स्वभाव ही ऐसा है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना। वो कर्म शायद वो परवश अवस्था में कर रहा है, उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ ही है। पर्सनैलिटी एंड एक्शन अलग कर देना है। ये सबसे बड़ी भूल हम कर देते हैं कि किसी ने कुछ करते हुए देखा तो इसका स्वभाव ऐसा ही है। जैसे कोई लेट आया तो क्या कहते हैं उसको, हमेशा रोज बराबर टाइम से आता है, एक दिन लेट आया, जिसको कहना है वो कहेगा ये हमेशा ही लेट आता है। स्टैंप लगा दिया, लेबल लगा दिया उसके ऊपर। एक्शन और पर्सनैलिटी को अलग रखना है। वो जो व्यक्ति इस समय कर रहा है, अंदर कोई ना कोई ग्रहचारी बैठी है। इसके लिए बाबा ने किसी अव्यक्त वाणी में कहा था, तुमको वर्तमान के स्वभाव संस्कार देखने ही नहीं है दूसरों के। ब्राह्मण परिवार में केवल अनादि संस्कार देखो या आदि संस्कार देखो। वर्तमान के संस्कार देखोगे तो झगड़े होंगे, टकराव होगा एक दूसरे के साथ। और इस यज्ञ में सबसे बड़ा और अच्छा नियम इस यज्ञ में चलने का एक ही है, झुक कर चलना। क्योंकि यदि हम किसी से टकराए, किसी से झगड़ा हो गया तो योग लगेगा शाम का, खत्म। दूसरे दिन अमृत वेला, खत्म, नहीं लगता है। इसके लिए नियम क्या है? इसके लिए हमेशा हम एक बात कहते हैं, हमारी स्थिति जो है उसकी कीमत है 1 करोड़, सबसे टॉप। उसके बाद में संबंध जो है आपसी, उनकी कीमत है 1 लाख। और तीसरा है सेवा, उसकी कीमत है 1000। कोई माता है, उसने गलती कर दी, आपने इतना डांटा उसे, इतना डांटा, सेवा को अधिक महत्व दिया। सेवा से व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति चला जाएगा, सेवा तो आएगी, पर वो माता चली जाएगी, वो कुमार चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। क्यों कुमारों कुमार टूट जाते हैं सेंटरों से? क्योंकि सेवा अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि सेवा लोएस्ट है। जो सेवा आज नहीं हुई कल हो जाएगी, पर व्यक्ति एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। वो शांतिवन में कभी एक नया नया सेवाधारी आया भंडारे में, और जो सुबह सुबह 4 बजे चला गया, किचन की सेवा थी, और वहां चला गया, वहां वो चीनी की क्या कहते हैं चाशनी वो बनाई थी बहुत सारे भर के, उसको लगा पानी है, उसने उड़ेल दिया पूरा। और जब उसको पता चला, एकदम से डर गया। वो बात ऐसी फैल गई सब तरफ कि अब तो तेरी खैर नहीं, कितना वो महंगा होगा, इतनी सारी चीनी वो बना के रखी थी। वो एकदम इतना डर गया, इतना डर गया। और फिर जैसे 9-10 बजे उसको न्यूज मिली, दादी ने कॉटेज में बुलाया है, अब तो बस क्या करूं और क्या नहीं, सामान पैक करके रख दिया। और जब उसको पता चला कि दादी ने बुलाया है, तो इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया। और दादी ने उसको कॉटेज में बुलाया, और दादी को पता था इसने क्या किया। और दादी ने कहा बैठो, और दादी ने पूछा नाश्ता किया है क्या, तो उसने कहा किया है। और दादी ने कहा टोली खाओगे क्या, और उसको टोली खिलाई और कहा अब जाओ बस, कोई वर्णन ही नहीं। अगर उस कुमार को, उस भाई को कुछ बोल दिया होता, हमेशा के लिए चला गया होता। व्यक्ति वस्तुओं से और सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। नुकसान हो गया चलेगा, पर व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली है टॉप मोस्ट हमारी स्थिति, दूसरा नंबर है हमारे संबंध व्यक्ति, और तीसरे नंबर पर है सेवा। ये नहीं भूलना है। तो तीसरे प्रकार का पहाड़ कहो या पेपर कहो, वो है साथियों के द्वारा। और हमारे इर्द गिर्द कौन आए हैं, इर्द गिर्द कौन आए हैं, हमारे जन्म जन्म के कौन शत्रु, जिससे हमने बहुत लड़ाई की थी द्वापर से, हम भी राजा वो भी राजा, उसको ऐसे हरा दिया था कि पूरा राज्य उसका छीन लिया था, उसके परिवार को मार दिया था। अब वही हमारे सेंटर पे हमारा साथी है। हम जमींदार, वो बेचारा किसान, जमीन ही हड़प ली थी, परिवार मर गया था पूरा उसका, अब वो यही आया है, साथ में ही है। तो कुछ ना कुछ तो होगा। नए हिसाब किताब नहीं बनाने, ये बात याद रखनी है बस। जो है उसको चुप तो करना है, न्यूट्रलाइज करना है, नए क्रिएट नहीं करने हैं। और नए क्रिएट होंगे यदि हम वही करेंगे जो वो कर रहा है, हम अगर बदला लेंगे तो वो होगा। तो ये तीसरा है। पहला बताया लौकिक, दूसरा बताया शरीर, तीसरा बताया साथी, चौथा हमारे छोटे, जो छोटे हैं, कन्याएं कहो, कुमार कहो, जो हमसे जो भी छोटे हैं उम्र में, उनके द्वारा भी पेपर आएंगे। उनके द्वारा कौन से पेपर आएंगे? नाराज होना, रूठना, रूसना, कुछ उनको बोल दो बस, तीन दिन बाद बंद। हमको कहा क्यों? बाबा मुरलियों में आता है, बड़ों को सम्मान दो और छोटों को प्यार। परंतु आजकल छोटों को क्या चाहिए? सम्मान। प्यार से कुछ नहीं होगा, सम्मान चाहिए। जब तक सम्मान नहीं मिलता है मजा नहीं आता है उनको। यहां जब स्टेज पर है तो बहन जी हमारा नाम लेना चाहिए कि हमने ये सेवा की। हमारा नाम क्यों नहीं लिया? और कुमारों को दो ही चीजें चाहिए, वो दे देना प्लीज। कौन कौन सी? एक तो स्तुति और दूसरा ब्रह्मा भोजन, बस इतना दे दो, सारा जीवन थोप दाव पर लगा देंगे, अर्पित कर देंगे यज्ञ में। और ये नहीं दो तो फिर मुश्किल है। जब सेवाओं का वर्णन हो उनका नाम ले लेना थोड़ा सा कि अच्छी सेवा की तुमने, बस खुश। तो छोटों से भी पेपर आएंगे, छोटों के साथ भी हमारे हिसाब किताब है, और कड़े हिसाब किताब है वहां पर भी। और जो कन्या आ रही है सेवा केंद्र पर, हमें क्या पता ये कौन है? हम देख रहे हैं कि हमसे आगे जा रही है, ज्यादा बुद्धिमान है, कोई कला उसमें है। हो सकता है जन्म जन्म की तपस्विनी आई है, उसने जो भक्ति की है वो इतनी ज्यादा है, उसकी जो साधना है वो ऐसी है कि हमने वो कभी की ही नहीं। उसमें वो अवगुण है ही नहीं जो हम कितने सालों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो बनी बनाई आत्मा आई है तैयार। ऐसी भी आत्माएं आ जाएगी। इसके लिए जो भी छोटे हैं उनको कम नहीं समझना है, ये समझना ये महान आत्मा आई है, मुझे इससे भी सीखना है, हर एक से सीखना है। छोटा सा बच्चा हो उससे भी सीखना है, कोई अनुभवी है उससे भी सीखना है, सभी से सीखना, तो उनसे भी पेपर आएंगे, उनसे भी माया आएगी, उनसे भी कुछ ना कुछ होगा। और ये तो बात अच्छी है कि हमारे हिसाब किताब जल्दी चुकते हो। एक भाई है वो तो कहता है जितने लोग हैं हिसाब किताब वाले जल्दी आ जाओ, फटाफट डांटो हमको, अपमान कर दो और जाओ, ताकि हिसाब तो चुकतु हो जाए। कुछ बोल दो, कुछ तो बोलो, तारीफ करने वालों से क्या फायदा, ऐसे निंदा करने वाले थोड़े चाहिए, अच्छे अच्छे तगड़ी निंदा करे। जो जुड़ा हमने रंगोली निकाली, कोई आके कहे तो ये कोई रंगोली है, इतनी खराब, किसने भोजन बनाया है, टेस्ट ही नहीं है इसमें, तो हिसाब चुक तो हो गया ना। कोई आए और कुछ बोल के चला गया, अच्छा ही है। दुखी होने की क्या बात है, नाराज होने की क्या बात है, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए था। एक अंग्रेजी ऑथर लिखता है, ब्रिंग मी बैड न्यूज, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, गुड न्यूज वीकन्स मी, मुझे खराब खराब खबरें लाओ, किसने मुझे धोखा दिया, कौन मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, कौन मेरी टांग खींचता है, उनकी खबरें मत लाओ जो मेरी स्तुति करते हैं, वाह वाह करते हैं, ये मेरे ज्यादा काम के लोग हैं, जो मुझे पक्का बनाते हैं, अडोल बनाते हैं। छोटों से भी पेपर आएंगे, उसके बाद में है बड़ों से पेपर। इस संपूर्ण यज्ञ में हरेक के ऊपर कोई ना कोई है, ये यज्ञ ऐसा बना हुआ है कि हरेक के ऊपर कोई ना कोई है, और हरेक को अपने ऊपर से कुछ ना कुछ तो पेपर आएगा। हम ये ना सोचे कि ये व्यक्ति कर रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमारा ही रिटर्न हमारे पास आ रहा है, इसको भूलना नहीं है। कर्म गति इतनी सूक्ष्म है कि इसमें किसी और का तो कोई हाथ ही नहीं है। और एक पूरी अव्यक्त मुरली इसी पर है, वो कौन सी हमको डेट याद नहीं है, बड़ों से आने वाले पेपर के ऊपर एक पूरी अव्यक्त वाणी है। बच्ची अब बाप से कहती है बाबा ये हमको ऐसा करती है वैसा करती है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जो निमित्त है उसको निमित्त किसने बनाया, क्या बाप बुद्धू है, और जो हमारे साथ हो रहा है, जैसे एक ऑफिसर है घर से बाहर निकलता है, कार का दरवाजा खोलता है, नीचे कुत्ता सोया रहता है, वो कुत्ता उसको काट लेता है, तो वो उसको जोर से एक पत्थर मारता है और फिर ऑफिस जाता है, ऑफिस जाता है, मीटिंग होती है, मीटिंग में इतना गुस्से में रहता है, वो जितने उसके ऑफिसर्स रहते हैं उन सबको डांटता है। अब वो जो सारे ऑफिसर है वो उनके नीचे जो भी रहते हैं वो उनको डांटते हैं, अपना गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं, सब अपना लास्ट में गुस्सा जो प्यून होता है ऑफिस का उस पर निकालते हैं। अब वो किसको डांटेगा, उसके नीचे कोई है ही नहीं। वो घर आता है, उसकी पत्नी कहती है लेट क्यों हो गए, उसको थोड़ा सा सुनाता है जल्दी कटी। अब पत्नी क्या करेगी, वो अंदर जाती है, देखता है बच्चा टीवी देख रहा है, उसको डांटती है, अपना गुस्सा पूरा उस बच्चे पर निकालती है। वो बच्चा भी टीवी बंद करके बाहर निकलता है और वो एक कुत्ता दिखता है, उसको पत्थर लेके जोर से मारता है, ये वही कुत्ता था सबसे पहला वाला, घूम के वही आ गया। जो भी हम कर रहे हैं हमारे साथ वही आ रहा है, सामने वही आ रहा है जो हमारा किया है, इसके लिए इसमें किसी और का तो कोई हाथ ही नहीं है। और यही समझना है, बड़ों से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो उनके द्वारा नहीं है, डायरेक्ट बाबा के द्वारा आ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें पता नहीं होती है। भगवान के जो प्लान है वो कुछ और है, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं और वो हमारा परम कल्याण करना चाहता है, यही अंतर है। हम अपनी बुद्धि से अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो परम कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के जो भी पेपर आएंगे उनको भी एंजॉय करना है, उसमें हमारी ग्रोथ ही है। द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम जो होगा वो विकास होगा, यदि उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। कोई कहे इधर नहीं अब उधर, उधर नहीं अब उधर, जहां हम जाएंगे वहां हमारा विकास ही होगा, उसी में कल्याण छिपा हुआ, ये भाव रखना और स्वयं को स्थिर कर देना। नहीं तो सबसे ज्यादा लोग इससे डिस्टर्ब रहते हैं। ये एक पेपर, उसके बाद में नेक्स्ट पेपर या बाहर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से क्या पेपर आते हैं आप ज्यादा जानते हैं, स्टूडेंट से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, जिनकी हमने पालना की, जिनका हमने कोर्स कराया, जिनको हम मधुबन लेके गए, जिनको हमने मधुबन दिखाया, जिनको हमने दादी से मिलाया, आज वही हमारे शत्रु बन जाए तो? जिनको हमने किचन में एंट्री दी, उन माताओं को आज हमारे ही दुश्मन बन के हमारी ही कंप्लेंट ऊपर लेके जा रहे, हम पर ही कलंक लगाने की सोच रहे हैं, ये भी पेपर आएगा। और ऐसा हुआ भी है कई जगह पर, अत्यधिक विश्वास कर लिया। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमें उनकी पालना भी करनी है, पर ये नहीं भूलना है कि वो अलग है हम अलग, ये इधर रहते हम वो वहां रहते हैं संसार में। वो कितना भी अच्छा कुमार रहने दो, वो कितना भी अच्छा भाई रहने दो, कितनी भी अच्छी माता रहने दो, पर रहते उस संसार में, वहां विकारों का वायुमंडल है। वो घर में बंद कमरे में टीवी में बैठकर क्या देखते हैं, इंटरनेट पे वो कुमार क्या देखते हैं, किसको पता कौन सी भावनाएं है उनकी। ऊपर से तो बहुत अच्छा मानते हैं, अंदर से क्या सोचते हैं। राखी जो बांध रही है शायद उसी का हाथ पकड़ने का विचार चल रहा है अंदर। इसके लिए खबरदार, स्टूडेंट्स की पालना करना, स्टूडेंट से अच्छा व्यवहार, परंतु डिटैच्ड। वो उधर वो इधर, काम पूरा हुआ, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए तो कितनी बहनों की उदाहरण है जो फंस गई किसी में, प्यार ही हो गया किसी से, संदेश व्हाट्सएप मैसेजेस चालू, पर्सनल बातें शेयर करना चालू है, छुप छुप के अंधेरे में। एक जगह तो ऐसा हुआ, कोई एक मुस्लिम भाई कभी कभी आता था, उसी में ही आसक्ति हो गई बहन की, और वो सारा व्हाट्सएप से इतना ज्यादा बढ़ गया, वो उधर से मैसेज भेज रहा है, तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं, तुम दिखती बहुत सुंदर हो। और फिर एक दिन उसकी पत्नी आ गई सेंटर पे झगड़ा करने, मेरे पति को छोड़ो नहीं तो मैं पुलिस में जाऊंगी, सेंटर पर आ गई। तो क्या ये शोभनीय है, क्या हम बाप का नाम बाला करेंगे? ऐसे सब ज्वलंत उदाहरण है ढेर सारे, और जिसमें मोह हो जाए फिर वहां तर्क काम नहीं करता, प्यार के सामने तर्क श्रीमत सब एक तरफ। भाग भाग के लोगों ने शादी की है, क्यों? विवश हो जाती है आत्मा। इसलिए खबरदार, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सबकी पालना करनी है, सबसे प्यार करना है, सबको प्यार देना है, परंतु डिटैच्ड। इतना अधिकार ना देने देना कि वो हमारे जीवन के अंदर आकर हमारे जीवन की बातों को जानने चालू कर दे। मिनी मधुबन है ये, मधुबन है जहां हम रहते हैं, और हम संसार को पावन बनाने वाली जिम्मेवार आत्माएं, बहुत बड़े काम हमको करने हैं। किसी एक व्यक्ति में फंस गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब रह जाएगा धरा के धरा बाजू में। इसके लिए स्टूडेंट्स से थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना है। उसके बाद में अगला पेपर है बाहर वालों से पेपर, बाहर वाले जो ज्ञान में नहीं है बाहर है। हमको याद है एक सेंटर पर हम गए थे भट्टी कराने, तो भट्टी चालू थी, बीच में अनाउंसमेंट हुई फला फला गाड़ी सामने से हटा दो, सामने जो सेंटर के बाहर मकान है, नहीं तो वो सामने वाला कह रहा है अभी कभी जला दूंगा घर को। इतना क्रोध आसपास वालों से, अभी कभी गाड़ी जला हटाओ नहीं तो जला दूंगा पूरी गाड़ी की गाड़ी। बाहर वालों से भी बहुत पेपर आएंगे, जो एकदम सहयोगी थे ब्रह्मा के सामने क्या हुआ, कितने सारे सहयोगी थे सब विरोधी हो गए एकदम, इधर भी हो सकता है। इसके लिए बीच बीच में सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन, आत्माओं को सहयोग, कुछ ना कुछ करते रहना है प्रोग्राम। एक बहुत अच्छी विधि है, डेज की लिस्ट निकालनी है। जैसे फरवरी मास है, फरवरी मास में कौन कौन से डेज है, लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, विमेन्स डे, ऐसे ढेर सारे डेज है। वो कोई ना कोई डे ढूंढो, आज की तारीख का एनवायरमेंटल डे, अर्थ डे, और उस तारीख को सेवा केंद्र पर कोई विशेष प्रोग्राम रखा जाए उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। लेबर्स डे, तो जितने लेबर्स हैं उन सबको बुलाओ। कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी वो लिस्ट, हर महीने में कुछ ना कुछ डेज होते हैं, तो इससे वो संपर्क बढ़ा रहे हैं। पुलिस वाले, फैक्ट्री वाले, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, नर्सेस का कोई ना कोई प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन, कुछ ना कुछ हो, क्योंकि आत्माओं को इधर उधर से कुछ खबरें मिल जाती है और विरोधी हो जाते हैं। जैसे एक बहन ने किसी भाई पर बहुत विश्वास कर लिया और उसने पूरी जमीन दे दी सेवा केंद्र के लिए, और बाद में पता चला वो उसकी जमीन थी नहीं, और अभी कोर्ट केस चालू है कितने समय से, वो तो किसी और की थी, उसने गलती से अपने नाम पर की थी और वो सेवा केंद्र को दे दी, अब वो कोर्ट के चक्कर चालू है अब तक। इसके लिए बाहर वाले जो भी है उनसे भी थोड़ा सा, जो सहयोगी वाले हैं वो भी, इसमें जो दूसरी सहयोगी आत्माएं हैं थोड़ा सावधान रहना है उनसे, क्योंकि उनकी बुद्धि पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पलट सकती है। इसके लिए होशियार। अभी अभी संडे शांतिवन में जो मुरली चली थी बाबा की 17 तारीख की, अलर्ट होशियार खबरदार, 3 शब्द कहे थे बाबा ने, अलर्ट होशियार खबरदार, स्वमान से नीचे नहीं आना, समय के महत्व को नहीं भूलना, ये 2 बातें थी। तो बाहर वालों से पेपर, उसके बाद नेक्स्ट पेपर मधुबन से पेपर, ये आप सब लोग ज्यादा जानते हैं। कौन सा मधुबन से क्या होगा, गए बराबर कौन सा पेपर आता है, आवाज नहीं आवाज एकोमोडेशन, और वहां पर भी थोड़ा सा बुद्धिमान। एक माता को लेके गए, वहां गए और उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके घर वाले सारे विरोधी है और उसको हम लेके गए थे, अब क्या करेंगे। ये सारे पेपर है वहां के। जैसे एक बहन ने उदाहरण बताया था, एक माता जिसके घर में सब विरोधी थे, उसको कैसे तो भी करके बाबा से मिलाने लेके गई, एक स्टेशन आया वहां उतरी और ट्रेन चालू हो गई, माता रह गई पीछे और ढूंढ रहे हैं, माता है ही नहीं, ये पार्टी पहुंच गई मधुबन, अब क्या करे, उसके घर वालों को क्या उत्तर दे। ऐसी ढेर सारी परिस्थितियां जहां पर बुद्धि का काम है, अनुभव चाहिए, स्मार्ट बनना है वहां पर, बुद्धू बन के नहीं चलेगा, घबरा जाना नहीं है, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से मधुबन जा रहे, सामान है सारा ट्रेन में, सुबह उठे तो गायब। जैसे एक भाई का उदाहरण इसके पहले भी दिया था कभी, अहमदाबाद के पहले से कहीं से बैठा और चल पड़ा कुमार, उसके कंपार्टमेंट में 3-4 लोग आ गए बैठे, उन्होंने कहा कि आप भी थोड़ा सा खाना खाएंगे हमारे साथ, तो उसने कहा नहीं नहीं हम बाहर का नहीं खाते, उन्होंने कहा बाहर का नहीं है घर का ही है, तो उसने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है, तो वो खाने लगे और वो बैठा रहा, पक्का था एकदम कुमार। और फिर वो लोगों ने कहा उसको, अच्छा लो भोजन तो नहीं, कम से कम बिस्किट तो खाओ, तो उसने कहा बिस्किट तो ठीक है मशीन मेड, बाबा ने तो कुछ कहा नहीं इसके लिए, खा सकते हैं, दृष्टि दो और खाओ, बिस्किट खा लिए। और जब वो उठा, अजमेर में था, सामान गायब, सामान गायब, लेके चले गए सब लोग, कुछ नशीली दवाई होगी उसमें, ये पदार्थ डाल दिए होंगे। तो ये सारे पेपर्स मधुबन के पेपर्स है। और एक बात और, मधुबन में हम जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं वो बात भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल उस पार्टी को घुमाना और वो सब करना नहीं है, अपनी स्व की तपस्या भी है। हम देखते हैं मधुबन में लोग आते हैं और आधा टाइम तो वो शांतिवन के बाहर ही शॉपिंग में ही चालू रहता है उनका, कुछ ना कुछ खरीदने में। किस लक्ष्य से जा रहे हैं मधुबन, वहां कौन क्या कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इससे मिलना है, उससे मिलना, उससे मिलना, इससे मिलना, मिलने जुलने में ही टाइम जा रहा है, टोली में ही टाइम जा रहा है, शॉपिंग में टाइम जा रहा है और पार्टी को संभालने में टाइम जा रहा है। स्व की तपस्या रह रही है और हम वास्तव में जा रहे हैं उसी के लिए। अगर देखा जाए तो वहां जाने के बाद पहले से थोड़ी प्लानिंग करके जानी है, और वहां पर भी बहुत सारे पेपर आएंगे, वहां पर भी बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। कौन क्या बोलते किसी का भरोसा नहीं, कोई ज्यादा रुक जाए तो तुरंत संकल्प चालू होते हैं, ये बहन अब तक क्यों रुकी है, कहां से है, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सब इधर उधर की बातें चालू हो जाती है। इसके लिए इन सब से खबरदार, अलर्ट, होशियार, काम से काम गए, जितना जिससे काम है उतना कर लिया। वहां पर हमने ये भी देखा है, बहनें आती है और वहां के भाइयों से इतना हिलमिल जुल जाती है, और कहां वो घूमने कहां जा रहे हैं, इधर घूमने जा रहे, कभी यहां घूमने जा रहे, कभी वहां साथ में घूमने जा रहे। ये करने आए थे या तपस्या करने आए थे? आए किस लिए थे? किसी को बोल देना मुझे ये चाहिए तो चलो वो भाई घुमाने लेके जाता है, घुमाने, कुछ तो शॉपिंग कराने, ये सब किस लिए है? ये धारणाएं है ही नहीं हमारी ब्राह्मण जीवन की। मनमोहिनी दीदी के समय की बात है, मधुबन में एक भाई अभी भी है, बहुत अनन्य भाई है और बड़े ही अच्छे हैं। वो कभी जा रहे थे, एक बहन सामने से आई, दीदी पीछे थी, वो भाई ने उस बहन को पूछा, बहन जी आप कहां से हो? दीदी ने पूछे, कहा शादी करनी है क्या, तुमको करना क्या है, कौन कहां से है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम अपना काम से काम रखो बस, इसमें क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, और उसमें फंस जाते हैं। और यहां आने के बाद फोन चालू रहते हैं, फिर यहां की कोई समस्या उधर फोन, वो क्या करेगा वहां से, ये सूक्ष्म माया है इस ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी जीवन की। खुद को सेफ रखना यह बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ा ही साधना है, सेल्फ सेफ्टी। विश्व का कल्याण छोड़ो बाद में, पहले स्व का कल्याण। तो मधुबन से माया कितने हो गए, 8, उसके बाद में 9वां लीगल, लीगल कोर्ट केस, ये सब भी होगा, पुलिस सेंटर पे आना या कुछ पूछताछ करना या कुछ हो जाना, वो टाइम पे भी डरपोक नहीं बनना है, इसमें भी थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, जो उत्तर पूछ रहे, जो प्रश्न पूछ रहे उत्तर देना है निर्भय होकर, यदि बुलाए तो वहां जाकर देना। कई बार हुआ है ऐसा, किसी बहन ने सेंटर पर ही फांसी लगा ली, पुलिस आई, सारों के बयान और वो सारा कोर्ट की बातें, क्या 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 होता है उसमें, उसमें डरना नहीं है, वो भी पेपर आ सकता है और आएगा, कुछ ना कुछ होगा किसी और कारण से, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, चोरी हो गई, कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो ये भी एक पेपर है। इसको भी कोई बड़ा नहीं समझना, इस संसार की सभी बातें बहुत छोटी है, हम बड़े, हर समस्या से बड़ा मैं हूं, हर विघ्न से बड़ा मैं हूं, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, ये 3 संकल्प रखने हैं। हर विघ्न से बड़ा मैं हूं, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, हर समस्या से बड़ा मैं हूं। यह बहुत छोटे है मेरे लिए, कुछ नहीं कर सकते मुझे, डरना नहीं है किसी से भी। और लास्ट पेपर है आर्थिक, फाइनेंशियल, धन की कमी। और जिस सेवा केंद्र पर प्यूरिटी बहुत अच्छी है, वहां धन चरणों में आके गिरेगा, भीख नहीं मांगनी है किसी से, किसी से भी नहीं। नहीं मिला तो चलेगा, झोपड़ी रही तो भी चलेगा, पर भीख नहीं मांगनी है किसी से भी। किसी एक जगह पर कोई एक सहयोगी भाई ने जमीन तो दे दी, सारा कर रहा है, परंतु सबको जैसे डरा के रखा हुआ है, कुमार डरते हैं उसके पास जाने से, पर कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि जमीन उसने दी है, कंस्ट्रक्शन चालू है, मैंने आगे पीछे घूमना पड़ता है और गुस्सा होता है बाद बाद में, शॉर्ट टेम्पर्ड, और बाहर का है थोड़ा सा सही हो गया है। नहीं चाहिए, नहीं बनेगा तो चलेगा, झोपड़ी ठीक है। जगदीश भाई जी से बाबा ने क्या कहा था, सेंटर ऐसा हो जिसकी कोई भी दीवार किसी विकारी के दीवार से टच ना हो, और सेंटर ऐसा हो कोई एक पैसा भी नहीं लगे किसी विकारी का बनने में। तीसरी भी बात थी वो दिल्ली के लिए थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो, वो तो वहां की थी, पर ये दो पहली जो दो बातें हैं बहुत जरूरी है। नहीं बना तो चलेगा। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, उस सेवा केंद्र पर दो ही स्टूडेंट थे, बस दो ही स्टूडेंट आते थे बस। हमको थोड़ा आश्चर्य लगा, हमने बहन जी से पूछा कि यहां दो ही स्टूडेंट्स। उसने कहा कि क्या करें, हम सेवा तो बहुत करते पर लोग आते नहीं, वो कोकण एरिया है जहां पर लोग मच्छी खाते हैं, उनको पता है ब्रह्मा कुमारीज में जाना मतलब नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा इस कारण से, और बहुत सारे ऐसे दूसरे कारण है तो जाते हैं, तो वो लोग आते नहीं कोई भी, पर दो ही स्टूडेंट है और 10 साल से दो ही स्टूडेंट आ रहे। तो हमने उस बहन से पूछा कि आप इससे पहले जो सेवा केंद्र में थे उसी ने बताया, वहां बहुत, वो तो रिट्रीट सेंटर था, इतना कुछ सेवाएं होती रहती थी, पर अभी मैं कुछ समय से यहां हूं और सेवाएं तो हम करते हैं, पर एक बात उसने बहुत अच्छी कही, उसने कहा मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है, और मैं अपना सारा समय अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन अपनी स्व की तपस्या में लगाती हूं, और सेवाएं भी हम करते रहते हैं। वो रेगुलर नहीं होते स्टूडेंट्स, वो एक दूसरा कोई कारण है, क्या है पता नहीं, बहुत सारे कारण है वैसे तो, परंतु ये जो भी परिस्थिति है मैंने इसे प्रेम से स्वीकार किया है, और जो भी सेंटर है छोटा मोटा वो ठीक है, वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग थे वहां पर। तो जहां धन की बात आई, किसी के सामने हमको हाथ नहीं फैलाने, स्वतः मिल जाए बहुत अच्छा, अनकंस्ट्रक्टेड रह जाए चलेगा। 1000 स्टूडेंट हो और सारे ढीले ढाले हो, उससे अच्छा 50 हो और निश्चय बुद्धि और योगियों की सभा हो, यह ज्यादा शक्तिशाली है। छोटा सा हो परंतु बहुत पावरफुल हो, यह ज्यादा लक्ष्य है। बहुत विस्तार की हमें आवश्यकता नहीं है, और आजकल तो मीडिया इतना फैल गया है कि सबको सब पता है, हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी ज्यादा लक्ष्य दो चीजों का रखना है, जो स्टूडेंट है उनकी पालना करना, और जो ज्ञान छोड़कर चले गए उनको वापस लाना। हमारा फोकस रहता है जो नए हैं अज्ञानियों को ज्ञानी बनाना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है ऑलरेडी, जो भी आपके सेवा केंद्र है छोटे मोटे, वहां पे 10 लोग हैं, अब 10ों की पालना करना, ज्ञान से, योग से, तपस्या से, हर संडे कुछ ना कुछ तपस्या भट्टी, ज्यादा फोकस भट्टियों की तरफ, ज्यादा फोकस तपस्याओं की तरफ, ताकि जो है वो टिक जाए और शक्तिशाली बन जाए, और जो छोड़ के चले गए उनको मनाकर फिर से लाना है। क्यों गया वो, क्या ऐसा निगेटिव देख लिया उसने, कुछ तो देखा होगा, इसलिए तो नहीं आना बंद कर दिया, और आना बंद भी कर दिया बताया भी नहीं, पहले तो छोटी छोटी बात बताते थे, अब तो ऐसा बंद कर दिया कि बस बंद ही कर दिया बिना बताए, कितने लोग होंगे जो चले गए, एकदम धक से बंद कर दिया आना, ढूंढना है कारण। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। सबसे पहला एक बार रिवाइज करते हैं, लौकिक तोड़ निभानी है परंतु मोह का पोषण नहीं होना चाहिए, तोड़ निभानी है परंतु अंदर ही अंदर मोह नहीं बढ़ता जाए। और ये याद रखना, इस संसार में कोई भी रहने वाला नहीं है, नोबडी इज इटर्नल, सबको मरना है, सबको मरना है, उनको भी बीमारी आएगी, और उनकी जो बीमारी है उनकी अपनी है, मैं यहां बैठ के क्या कर सकता हूं उनके लिए, सकाश तो बस, और क्या कर सकता हूं, उनके पास जाके बैठ जाऊं क्या करूं, उनका जीवन अपना है, हमारा जीवन अपना है। जैसे उदाहरण बताया था वो बहन का, वो दुखी है, मेरा भाई दारू पीता है, उसका भाग्य है, आप क्या कर सकते हो यहां बैठकर, हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कराओ, जो करना है करो, बस दिन रात उसी की चिंता करते करते सेंटर की चिंता कब करोगे, स्टूडेंट्स की पालना कब करेंगे, विश्व कल्याण का, ब्रह्मा कुमारी का इतना बड़ा कार्य है, किसी एक व्यसनी व्यक्ति के चिंतन में नहीं लगा सकते। दूसरा देह, इस देह को स्वस्थ रखना है। अगर बार बार बीमार हो रहे तो जरूर कुछ ना कुछ गलती है, और बहुत सारी बीमारियां जो हमारी है वो मानसिक है, साइकोलॉजिकल है, ढूंढना है क्या है, कहां से है। एक बहन आई थी, इतनी मोटी फाइल थी उसकी, ये बीमारी वो बीमारी, ये दुखता है कभी, वो दुखता है, वो दुखता है, वो दुखता है, वो दुखता है, और सारे टेस्ट नॉर्मल, किसी टेस्ट में कहीं पर कुछ नहीं, और ढेर सारे टेस्ट कर रही कर रहे कर रहे कर रहे। एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था उसने, उस साइकेट्रिस्ट का डायग्नोसिस लिखा था छोटे अक्षरों में, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर्स, दमन हो रहा था कहीं ना कहीं, उसकी अभिव्यक्तियां थी सारी जो प्यूरिटी को नहीं समझ पा रही थी आत्मा। बचपन, कॉलेज लाइफ, और अचानक ज्ञान मिल जाना, और फिर इधर आ जाना, और वो सारा दब गया, ढेर सारी इच्छाएं थी वो सब रह गई, और अभी बीच बीच में निकलती है बाहर, अर्थात ज्ञान की गहराई नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। और फिर उसके बाद में इंटरनेट है, उसके बाद में वो वीडियोस है, क्या बैठ के देख रहे हैं, सारे विकार अंदर प्रवेश करते हैं ब्रह्मचारी मन में, और ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं स्वप्न में, संकल्प में, कल्पनाओं में, ख्वाबों में। तीसरा साथी, चौथा छोटे, पांचवा बड़े, छठवा स्टूडेंट्स, सातवा बाहर वाले, आठवा मधुबन, नौवा लीगल मैटर्स, ये सब भी पेपर आएंगे, उसकी भी थोड़ी जानकारी हो हमारे पास, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। और लास्ट आर्थिक भी होगा, जो भी होगा, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, जिस परिस्थिति में वो रखे उसी में खुश रहना है, होई सोई जो राम रची राखा, उसके ऊपर हमने अपना जीवन उसको दिया है, किसी देहधारी को नहीं जीवन दिया है, उसको दिया है, वो रक्षा करेगा, योगक्षेम वहाम्यहम, ये उसका वचन है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। किसी शरीरधारी के सामने समर्पण होने की आवश्यकता नहीं, हमारा प्योर जीवन है, और प्योर जीवन अनटच्ड रहे, कोई भी पुरुष इस देह को स्पर्श न कर सके, इतनी किसी में हिम्मत यदि हो रही है तो वो हमारी गलती है, हमने ही जरूर बड़ा उसको इतना कुछ ना कुछ किया है। और लास्ट बात कथा कह रहे और फिर क्लास को पूरा करते हैं, जगदीश भाई उदाहरण दिया करते थे उस कन्या का जो कि पानी भर रही है कुएं से, और वहां से एक युवक आता है, वो कहता है मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, वो कहती है पानी मैं दूंगी, पर एक शर्त है, अंग से अंग ना लगे, ये इतनी से शर्त है। वो कहता है ठीक है मैं मानता हूं, और वो पानी उसको पिलाती है, और वो पानी पीकर चला जाता है। कुछ कालांतर में बिना दोनों के ज्ञान के दोनों का विवाह हो जाता है, उनको नहीं पता रहता है कि इसके साथ मेरा विवाह हो रहा है, उनके मां बाप निश्चित करके दोनों का विवाह हो जाता है, और विवाह का पहले दिन आमने सामने आते हैं, और जैसे ही आमने सामने आते हैं वो कन्या कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे, अनटच्ड प्यूरिटी, इसका ध्यान रखना है। और ये जो सारे पेपर्स, बातें, पहाड़, टाइगर कहो, ये सब पेपर टाइगर है, पेपर माउंटेन से कुछ नहीं होगा। हम अपनी धारणाओं में, अपने ज्ञान चिंतन में, अपने मनन में, एकांत में, मौन में, तपस्या में मगन रहे, बस ऊपर से सेवाएं चालू रहेगी। सेवाओं के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, परंतु तपस्या के लिए सोचने की आवश्यकता है। सेवा तो इतनी ऑटोमेटिक हो गई है, कोई अगर सोचे कि मैं सेवा नहीं करूंगी तो भी होती रहेगी, उससे इतना रग रग में समाई है। पर तपस्या के लिए संकल्प की आवश्यकता है, सेवा के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं है। योग के लिए संकल्प की आवश्यकता है, ज्ञान के चिंतन के लिए तपस्या इसकी आवश्यकता है। यह बाबा ने कहा मुरली में, यह क्यों कहा, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो, स्लोगन में था। क्या है ये, इसका अर्थ क्या है? कर्म योगी योग युक्त कर्म हो, वरदान में था, इसका क्या अर्थ है? शरणागति के क्या अर्थ होते हैं? शब्द लेना, उसकी गहराई में जाना। भक्ति में इसका क्या अर्थ है? ज्ञान में इसका क्या अर्थ है? शरणागति, कितने प्रकार की शरणागति होती है? वैष्णव में शरणागति का क्या अर्थ है? शैव में शरणागति का क्या अर्थ है? अलग अलग धर्मों में शरणागति रेफ्यूजी का क्या अर्थ है? मुरली से उठाना, चिंतन करना, मनन करना, इसी में बिजी रहना है। ऊपर से सेवाएं चालू रहे, कोर्स कराना है आप, किचन, ढेर सारी बातें वो सब चालू रहे, परंतु चिंतन छूटे ना। ये हमारी साधना है, ये हमारी तपस्या है। अच्छा, ओम शांति।